तुम चाहती हो कि हमारी बेबी को लगे कि वो अनवांटेड है? सोचो, कैसा लगेगा उसे जब उसे मालूम चलेगा कि जब तुम्हें उसके आने की खबर मिली थी तो तुम खुश होने के बजाय आंसू बहा रही थी, मातम मना रही थी, अपनी प्रेगनेंसी से खुश नहीं थी, तो उसे कितना बुरा लगेगा। अर्जुन ने बड़े ही प्यार से उसको समझाया और सृष्टि उसकी बात समझ भी गई। अर्जुन ने उसके मन में डर से आज़ाद कर दिया था, अब वो इस अनमोल खुशी को महसूस कर पा रही थी। अर्जुन जैसे ही चुप हुआ, सृष्टि उसके सीने से आ लगी और उसकी पीठ पर अपनी बाहों को कसते हुए बोली, आई एम सॉरी अर्जुन, आई प्रॉमिस, अब मैं दोबारा कभी ये सब सोचकर परेशान नहीं होंगी और अपने दोनों बच्चों को उनके हिस्से का प्यार दूंगी। जो खुशी भगवान ने बिना मांगे मुझे दी है उसकी कद्र करूंगी और हमारे बच्चे को कभी ये नहीं महसूस होने दूंगी कि वो अनवांटेड है। हमारे प्यार की इस खूबसूरत निशानी को हमेशा संभाल कर रखूंगी और हम मिलकर अपने दोनों बच्चों को खूब सारा प्यार देंगे, दोनों में कभी कोई अंतर नहीं करेंगे। अर्जुन ने हामी भरी और उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके सर को प्यार से चूम लिया। कुछ देर दोनों यूं ही एक दूसरे के सीने से लगे रहे, फिर अर्जुन ने उसे खुद से दूर किया और मुस्कुराकर बोला, थैंक यू जानू, मुझे ये अनमोल खुशी देने के लिए। अंश के टाइम मैं खुलकर इस खुशी को महसूस तक नहीं कर सका था, पर इस बार मैं हर लम्हे को महसूस करूंगा। तुम्हारा और हमारे होने वाले बच्चे का बहुत ध्यान रखूंगा। ये 9 महीने तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 9 महीने होंगे, इसीलिए अब तुम सारी चिंता छोड़कर बस अंश पर और हमारे आने वाले बच्चे पर अपना ध्यान लगाओ। महसूस करो इस खुशी को और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। सृष्टि ने मुस्कुराकर हामी भर दी। कार एक बार फिर ठाकुर मेंशन की तरफ बढ़ गई। अब खुशखबरी सबसे बांटनी भी थी, तो दोनों यही सोच रहे थे कि कैसे सबको इस बारे में बताया जाए। सृष्टि ने जैसे ही घर की चौखट पर कदम रखा, नन्हा अंश अपनी तोतली जुबान में मम्मा मम्मा पुकारते हुए नन्हे नन्हे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। अंश को देखते ही सृष्टि का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने नीचे झुकते हुए अपनी बाहों को फैला दिया और नन्हा अंश आकर उसके सीने से लिपट गया। सृष्टि ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए गोद में उठा लिया और प्यार से उसके चेहरे को चूम लिया, फिर खुशी से गोल गोल घूमने लगी। अर्जुन, जो उसके पीछे ही था और दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था, उसने सृष्टि को केयरलेसली घूमते और उछलते देखा तो उसके चेहरे पर कठोर भाव उभर आए। सृष्टि, अर्जुन की कठोर आवाज़ जैसे ही सृष्टि के कानों में पड़ी, वो एकदम से रुक गई और निगाहें घुमाकर अर्जुन को देखा। अर्जुन ने उसे घूरते हुए कठोर लहजे में कहा, भूलो मत, अब तुम अकेली नहीं हो। सृष्टि को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने क्यूट सी शक्ल बना ली। अर्जुन ने बेबसी से अपना सर हिलाते हुए कहा, अभी तुम खुद बड़ी नहीं हुई हो, पता नहीं अंश को कैसे संभालती हो और हमारे आने वाले बच्चे को कैसे संभाल पाओगी। एक बच्चे को अपनी तरह शैतान बना लिया है, पता नहीं दूसरे का क्या होगा। कहीं इन तीनों बच्चों की शैतानियों को झेलते झेलते मैं पागल ही ना हो जाऊं। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि ने बुरा सा मुंह बना लिया। कैसे ताने मार रहे हैं, जैसे सारा दिन यहीं बैठे रहते हैं मुझे और अंश को संभालने के लिए। अंश को मैं ही संभालती हूं तो उसे भी मैं ही संभालूंगी। और मुझे क्या कह रहे हैं, आप खुद भी दूध के धुले नहीं हैं, अंश आप पर ही गया है और देखिएगा जो अंदर है ना, वो भी आपके ही जैसा होगा। फिर देखूंगी मैं कि कैसे अपने दोनों बच्चों को संभालेंगे आप। सृष्टि ने उसको घूरा, फिर अंश को लेकर अंदर चली आई। अर्जुन ने सर हिलाया और सृष्टि की रिपोर्ट लेकर रूम में आ गया। दूसरी तरफ बीते कुछ दिनों से आरवी को अपनी तबीयत कुछ नासाज मालूम पड़ रही थी, जिससे उसको शक हुआ और उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया। जो वो नहीं चाहती थी वही हुआ। उनकी शादी को 2 साल होने को था और वो प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी की खबर सुनकर आरवी खुश होने के बजाय परेशान हो गई, क्योंकि वो दूसरा बेबी नहीं चाहती थी और उसकी प्रेगनेंसी को 2 महीने होने वाले थे। अजीब दुविधा में फंसी हुई थी वो, और अब तक उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। इस बात को भी कुछ दिन बीत चुके थे, पर अब तक आरवी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी कि आखिर इस बच्चे का क्या करेगी। शाम का वक्त था, अंशु छाया और अर्पिता जी के साथ बाहर गार्डन में खेल रही थी। आरवी डिनर की तैयारी कर रही थी, पर दिमाग में यही सब परेशानी चल रही थी। अचानक ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, सर घूमने लगा और अगले ही पल वो जमीन पर जा गिरी। उसका हाथ लगने की वजह से जिस प्लेट में वो सब्जी काट रही थी वो भी जमीन पर गिर गया। शान अभी अभी घर आया था और ड्राइंग रूम में कदम रखते ही उसके कानों में बर्तन गिरने की आवाज़ पड़ी, जो किचन से आ रही थी। बाहर अर्पिता जी से उसे मालूम चल गया था कि आरवी किचन में है। किचन से आती आवाज़ सुनकर वो बिना एक पल गवाए बैग सोफे पर पटकते हुए सीधे किचन की तरफ भागा। किचन के एंट्रेंस पर कदम रखते ही उसकी नज़र सामने फ्लोर पर सब्जियों के बीच गिरी आरवी पर पड़ी। एक पल को वो स्तब्ध रह गया, फिर अगले ही पल आरवी की तरफ दौड़ गया। उसने उसके सर को अपनी गोद में रखकर उसके गाल को थपथपाते हुए उसको पुकारा, पर आरवी ने अपनी आंखें नहीं खोली। पानी डालने पर भी कोई असर नहीं हुआ। शान की धड़कनें थमने लगी और मन भय से भर उठा। उसने तुरंत उसको अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे की तरफ दौड़ गया। कुछ देर बाद शान, अर्पिता जी, छाया, अंशु सब रूम के बाहर खड़े थे और अंदर डॉक्टर आरवी को चेक कर रही थी। शान बेचैनी से हाथ बांधे यहाँ से वहां चहलकदमी कर रहा था। तभी उसके कानों में दरवाजा खुलने की आवाज पड़ी और उसने तुरंत कमरे के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। डॉक्टर बाहर आई। इसके साथ ही शान ने बेचैन परेशान निगाहों से उन्हें देखते हुए व्याकुलता से सवाल किया, डॉक्टर क्या हुआ है आरवी को? वो अचानक बेहोश कैसे हो गई और होश में क्यों नहीं आ रही थी? सब ठीक है ना? आरवी ठीक तो है? डॉक्टर उसकी व्याकुलता और उस परेशानी में छुपा आरवी के लिए उसका प्यार देखकर मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, मिसेस मल्होत्रा बिल्कुल ठीक है, शायद अब तक उन्होंने आपको बताया नहीं। ये सुनते ही शान के चेहरे पर सवालिया भाव उभर आए। उसने डॉक्टर की बात बीच में काटते हुए पूछा, क्या नहीं बताया आरवी ने मुझे? एक्चुअली कुछ दिन पहले मिसेस मल्होत्रा मेरे पास आई थी, उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर बात करने आई थी वो मुझसे। उनके सिम्टम्स देखकर ही मैंने बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है। फिर भी श्योरिटी के लिए हमने उनके कुछ टेस्ट किए थे जो पॉजिटिव आए। मिसेस मल्होत्रा ऑलमोस्ट 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। मैंने उन्हें पहले ही बताया था कि अब उन्हें अपना और ज्यादा ध्यान रखना होगा, पर इन्होंने लापरवाही दिखाई। प्रेगनेंसी में ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उन्हें चक्कर आ गए थे, जो उनके और बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शुरुआती महीनों में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। वैसे तो मैंने उन्हें सब बताया हुआ है, फिर भी आप एक बार उनके साथ आकर मुझसे मिल लीजिएगा। उन्हें होश आ चुका है तो चाहे तो आप उनसे मिल सकते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, पर मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है क्योंकि ये जानना आपका हक था और अब आपको ही मिसेज मल्होत्रा का ध्यान रखना होगा। होप सो कि पिछले बार जैसी सिचुएशन इस बार नहीं बनने देंगे आप। आरवी की अचानक आई ये प्रेगनेंसी की खबर सबके लिए अप्रत्याशित थी। शान के साथ साथ बाकी सब ये सुनकर हैरान हो गए थे कि आरवी प्रेग्नेंट है। वो ये बात जानती है पर उसने किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। खुद शान पहले कुछ सेकंड ब्लैंक रह गया था, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और डॉक्टर की बात सुनकर सहमति में सर हिलाते हुए बोला, जी मैं आरवी का पूरा ध्यान रखूंगा और कल ही उसके साथ आपके पास आऊंगा ताकि सारी बातें जान सकूं, क्योंकि वो तो खुद का ख्याल रखेगी नहीं, तो उसका ध्यान रखने के लिए मुझे सब पता होना बहुत जरूरी है।
डॉक्टर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर वहां से चली गई। बाकी सब तो अब भी शॉक थे, पर अंशु को तो कुछ समझ ही नहीं आया था। डॉक्टर के जाते ही वो शान के पैरों से लिपट गई और रुआंसी होकर बोली, डैडा मम्मा को क्या हो गया? शान जो आरवी के बारे में सोच रहा था उसके कानों में अंशु की आवाज पड़ी तो उसने सर झुकाकर उसे देखा। फिर उसके परेशान डरे हुए चेहरे और नम आंखों को देखकर फर्श पर घुटने टिकाते हुए बैठ गया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बड़े ही प्यार से बोला, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हैं बच्चे, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप तो डैडा की ब्रेव डॉल है ना, तो रोना बंद कीजिए और बिग दादी के साथ यहाँ रुकिए। डैडा को मम्मा से कुछ ज़रूरी बात करनी है, पहले डैडा मम्मा से बात कर ले फिर आप मम्मा से मिल लीजिएगा। शान ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया, फिर अर्पिता जी की तरफ निगाहें घुमाई तो उन्होंने पलकें झपकाते हुए कहा, आप जाइए हम अंशु को संभाल लेंगे। शान को अंदर आए कुछ मिनट बीत चुके थे पर कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बेड पर आरवी सर झुकाए उदास मायूस सी बैठी हुई थी, शान उसके ठीक सामने खड़ा था। कुछ देर शान खामोशी से बस आरवी के चेहरे को देखता रहा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? कुछ पल की खामोशी के बाद शांतनु ने आरवी से ये सवाल किया। अब भी वो बस आरवी का चेहरा देख रहा था जबकि आरवी अब भी उसके सामने सर झुकाए खामोश बैठी थी। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया वैसे ही सर झुकाए बैठी रही तो शांतनु उसके पास आकर बैठ गया और उसके हाथ को अपनी हथेलियों में थामकर बेहद प्यार से कहा, आरवी मेरी तरफ देखो। आरवी ने इतनी देर में अब पलकें उठाकर उसे देखा। उसकी आंसुओं से भरी आंखों को देखकर शांतनु ने उसे सीधे अपने सीने से लगा लिया। आरवी उसके सीने से लगकर सुबकने लगी। शांतनु उसकी पीठ सहलाते हुए आगे बोला, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है, डॉक्टर ने कहा ना तुम बिल्कुल ठीक हो और हमारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। मैं डर गई थी,